लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम,
हरे राम हरे राम,
राम राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे।
तो आज के इस 16 फरवरी के सायंकालीन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। धाई गौ ब्रह्मानंदी। आशा है कि आपका वृंदावन बरसाने का निवास आनंद में रहेगा। Hopefully you are happy। श्री बरसाना धाम की
जय।
तो क्या कथा सुनने की इच्छा है आपको आज? हरे कृष्ण। सोचा आपको सब कथा आज एक ही दिन बता दूं। भौतिक दुनिया में सब जीव यहां पर जन्म मृत्यु बीमारी और बुढ़ापा ये सबके चक्र में फंसे रहते हैं। सब लोग इसको कुंठ खा गया है। कुंठ यानी जहां पर सब लोग कुंठित रहते हैं, बद्ध अवस्था में रहते हैं, बंद रहते हैं, जेल में रहते हैं। इसके जेल में जन्म मृत्यु बीमारी और बुढ़ापा और ये सब शरीर के लक्षण हैं। शरीर का जन्म होता है, शरीर बीमार होता है, बुढ़ा होता है और उस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु होता है उसका भी यहां पर जन्म निश्चित है। जब तक वो भगवान का भक्त नहीं बनता है, जब तक वो भगवान का भक्त नहीं बनता है तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराशयनम, पुनः पुनः माता के गर्भ में आते रहते हैं, जन्म लेके मृत्यु होके फिर जन्म लेता है। इसके परे वैकुंठ है, यानी कि हम सब लोग एक ब्रह्मांड में रहते हैं जिसमें 14 लोक हैं, 7 स्वर्ग लोक हैं, एक हमारा लोक है पृथ्वी वाला, और 6 नरक लोक हैं। टोटल 14 लोक हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मा लोक है। ये सब मिलके एक ब्रह्मांड बनता है, और केवल एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड है। एक बोरी के अंदर अगर आप सरसों के दाने मस्टर्ड सीड्स भरेंगे 100 किलो, और हमारे बीएससी के स्टूडेंट को बताएंगे, हम लोग बैठ के भी गिनो उसके अंदर कितने हैं, शाम तक पता देना कितना नंबर है। तो गिन सकते क्या आप लोग? डिप्लोमा डिग्री में बताया आपको कैसे गिनना है उसको? नहीं गिन सकते उसको। वो तो 100 किलो है, दुनिया में तो कई टन हजारों टन सरसों के दाने होते हैं। वैसे ही भगवान के निर्माण में अनंत ब्रह्मांड है। हमारे ब्रह्मा 4 मुख वाले हैं और 1000 मुख वाले भी हैं, 10,000 वाले भी हैं, 1,00,000 मुख वाले भी ब्रह्मा जी हैं और 10 कोटि मुख वाले भी ब्रह्मा जी हैं। ऐसे अलग अलग ब्रह्मांड है दुनिया में, लेकिन वो सब जगह पर जन्म और मृत्यु है। और उसके आगे है एक नदी है, उसका नाम है विरजा नदी, जो इस भौतिक दुनिया को वैकुंठ से अलग करती है। और वैकुंठ में जन्म मृत्यु नहीं है। जब आदमी यहां से भगवान की भक्ति करके वैकुंठ में जाने के योग्य बनता है तो वो वैकुंठ में जाता है और वहां पर उसको वो शरीर प्राप्त होता है जिसकी जन्म और मृत्यु और बुढ़ापा और बीमारी नहीं होती। और ऐसे अनंत वैकुंठ भी हैं, एक वैकुंठ नहीं है, अनंत विष्णु के स्वरूप है, उनके अनंत नाम है, सब 4 भुजा वाले हैं। और इस अनंत वैकुंठों के आगे भी कुछ है, वैकुंठ एंड नहीं है, उसके आगे तीन विशेष लोक हैं। एक का नाम है द्वारका, दूसरे का नाम है अयोध्या और तीसरे का नाम है मथुरा। मतलब वैकुंठ वाले द्वारका, वैकुंठ वाला अयोध्या और वैकुंठ वाली मथुरा। और उसके आगे भी कोई चीज है, उसका नाम है गौलोक वृंदावन। सब लोग ध्यान से सुनना, हमारी कथा यहां से शुरू होती है। आपको ये समझ में आया तो आगे कथा समझ में आएगी। गौलोक वृंदावन और वैकुंठ में क्या अंतर है? गौलोक वृंदावन में भगवान को भगवान के रूप में कोई पहचानता नहीं, और सारे अनंत वैकुंठों में भगवान भगवान है, ये सब कुछ जानते हैं लोग। सब प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, गीत गाते हैं उनके लिए, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। लेकिन वही भगवान जो भगवान बनकर वैकुंठ में राज्य करते हैं, वो जब गौलोक में जाते हैं तो चार भुजा वाले छोड़कर दो भुजा वाले बन जाते हैं, द्विभुजा बनते हैं, दो हाथ वाले। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां रहते हुए वो अपने भगवान का जो पोजीशन है वो छोड़ देते, केवल एक पुत्र बनकर, एक मित्र बनकर, एक सखा बनकर, एक प्रियकर बनकर रहते हैं वो। मां उनको बच्चा समझकर डांटती है, फ्रेंड लोग फ्रेंड समझकर उसको डांटते हैं, उसको कंधे पे चढ़ते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं, गुल्ली और डंडा खेलते हैं। वैकुंठ में आप विष्णु के साथ में गुल्ली और डंडा नहीं खेल सकते, तो बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। एक बार विंस्टन चर्चिल था ना, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, उसने 11 बजे मीटिंग बुलवाई थी और सभी यूके के मिनिस्टर्स वहां पर आए थे। वहां पर टाइम पे आते, हमारे जैसे नहीं आते, सब टाइम पे आते। तो पहले से खड़े थे सब लोग आके, और दरवाजा बंद था, थोड़ा सा खुला था। तो चर्चिल भी प्रधानमंत्री थे, बहुत टाइम पे काम करते अपना। उस दिन 11 हो गए, 11:15 हो गए, 11:30 हो गए, 12 बज गए, 12:15 हो गए, 12:30 बज गए, फिर भी दरवाजा नहीं खुला और सब मिनिस्टर लोग बाहर खड़े। तो क्या हो गया आज, प्रधानमंत्री टाइम पे नहीं आ रहे आज, क्या बात है? थोड़ा दरवाजा खुला था तो एक आदमी ने, मंत्री ने थोड़ा धारस किया और देखा थोड़ा खोल के, क्या कर रहे हैं अंदर? तो क्या कर रहे थे मालूम है क्या? उनका पोता उन पर बैठा हुआ था और वो घोड़ा बनाकर उसको खेला रहे थे। प्रधानमंत्री घोड़ा बने थे, उनका पोता उस पर बैठा था और उसको सैर करा रहे थे घर के अंदर। तो पोते के लिए वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो दादाजी है उसके। ये नजर न हो कि देश के प्रधानमंत्री है। इसलिए हमारे साहब जो है वो 12:30 तक बिजी थे। वैसे ही कुछ हाल कृष्ण भगवान का गोलोक वृंदावन में। वहां पर कोई पहचानते नहीं कि भगवान के जगन निर्माता है, जगन नियंता है, सब सृष्टि का रचयिता है, कोई जानता नहीं उनको। उनको डांट पड़ती है वहां पर, उनको खेल में हारने के बाद में किसी को कंधे पर उठा के घूमना भी पड़ता है। वो भगवान का गौलोक धाम है, जहां पर भगवान स्वयं अपने घर में रहने का आनंद देते हैं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कुछ नहीं है, प्रेम से रहते एकदम सखियों के साथ, सखाओं के साथ, माता पिता के साथ, सबके साथ प्रेम में रहते हैं। और वो भगवान का चिरंतन धाम है, वहां पर नित्य लीला भगवान की चलती रहती है। नित्य यानी उसमें कोई बाधा नहीं है, वो इतनी मधुर लीलाएं हैं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, पोजीशन का या अधिकार का। भगवान शुद्ध प्रेम के अंदर अपने भगवान भक्तों के साथ में रहते हैं। और जो वैकुंठ में रहते हैं वो भी वहां जाने के योग्य नहीं होते, उससे भी श्रेष्ठ भक्त जो है, सबसे निकट के भक्त जो है, वो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। और भगवान की ही माया के प्रभाव से वो भी भूल जाते हैं कि भगवान है। भगवान चाहते भी नहीं है कि वो मुझे याद करे कि मैं भगवान हूं, वो एकदम फ्री वहां का आनंद का उपभोग करना चाहते। वो जो गौलोक वृंदावन है उसका एक हिस्सा पृथ्वी पर प्रकट हो जाता है, क्योंकि भगवान पृथ्वी पर आकर कुछ लीला करना चाहते। तो राधा रानी को कहते हैं, चलो टाइम हो गया है नीचे जाने का, अवतार लेने का समय हो गया है। तो राधा रानी कहती है कि जब तक जमुना जी, जब तक वृंदावन और जब तक श्री गिरि गोवर्धन नहीं रहेगा तब तक मैं नीचे नहीं आऊंगी। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा मन जानकर मैंने पहले ही तुम्हें पूछने के पहले से ही गोवर्धन जमुना और वृंदावन को नीचे भेज दिया है, तब वो आने को तैयार हो। और कुछ समय के बाद में भगवान का अवतार होता है, राधा रानी का भी जन्म होता है अलग अलग जगह पर, और फिर लीला आरंभ होती है। तो आप जहां बैठे हैं ना, वही श्री वृंदावन धाम का हिस्सा है, ये गोलोक वृंदावन का हिस्सा है। बहुत पावरफुल चीज है। और भगवान ने स्वयं कहा है कि पूरे विश्व में जो भगवान ने निर्माण किया है ना, उसमें उनको भारतवर्ष जो है बहुत प्रिय है। 14 लोग जो है स्वर्ग लोग हैं, उसमें से भी पृथ्वी लोग उनको ज्यादा प्रसन्न है। पृथ्वी लोग पर उनको भारतवर्ष जो है सबसे प्रिय है, क्योंकि भारतवर्ष जो है यहां पर संत लोग जन्म लेते हैं, उनके भक्त लोग, इसलिए उनको बहुत पसंद है। और भारतवर्ष में उनको मथुरा मंडल बहुत प्रसिद्ध पसंद है, बहुत उनको प्रिय है। और मथुरा मंडल के अंदर 108 वन है जो उनको उससे भी अधिक प्रिय है, जिसके अंदर वो अपने गोपाओं गोपालों को सखियों को सखाओं को दोस्तों को मिलते रहते हैं, लीला करते रहते हैं। उन 108 वन में 12 वन उनको अति प्रिय है, उसमें से जमुना जी के इस तरफ 5 है, उस तरफ 7 है। उन 12 वन में भी उनको एक वन सबसे अधिक प्रिय है, वो कौन सा वन है? श्री वृंदावन। 12 वन में सबसे बड़ा वन है। और श्री वृंदावन में गोवर्धन जमुना नंदगांव बरसाना यावट ये सब कुछ सम्मिलित है। आज की तारीख में ज्योग्राफिकल दृष्टि देखा जाए तो वृंदावन दूर है यहां से, और उसको वृंदावन एक थाना माना गया है वृंदावन, और आगे मथुरा है, फिर यहां पर छाता है, फिर यहां पर नंदगांव है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से वृंदावन जो है उसका विस्तार जो है वो नंदगांव बरसाना यावट ये सब जगह फैला हुआ है, और ये भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। और इस वृंदावन में भी भगवान को श्री गोवर्धन जो है ये उससे भी अधिक प्रिय है, और इस गोवर्धन में भी उनको राधा कुंड और श्याम कुंड उससे भी अधिक प्रिय है। इस तरह से ये बना हुआ है सिस्टम, और उसी का एक हिस्सा है बरसाना। अभी वृंदावन धाम का जो पहले मैं आपको महात्म्य बताऊंगा, वृंदावन धाम ये क्या चीज है। वृंदावन एक परिपूर्ण धाम है, इसके अंदर विश्व भर के जितने भी धाम है वो आके बैठे हुए हैं। आके बैठे हुए कहने के अच्छा बहना ये है कि सभी धामों ने यहां पर आकर आश्रय ग्रहण किया है। ऑल दी होली प्लेसेस हैव टेकन शेल्टर हियर। तो ये हमको समझना जरूरी है कि कैसे कैसे भगवान ने अलग अलग धाम को यहां पर बसाया। तो कई कहानियां मैं आपको बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा। एक बार राधा रानी और गोपियों ने को काम्य वन में बैठे थे, आनंद ले रहे थे, तब गोपियों ने जिद किया कि हमने सुना है कि तुम भी राम थे पहले जन्म में, और तुमने सेतु बनवाया था, हमने सुना था बहुत बड़े सागर में तुमने 100 योजन तक सेतु बनाया, हमको उसका दर्शन दिलाओ। तो कृष्ण ने कहा, मैं किधर राम, मैं तो तुम्हारे जैसा ब्रजवासी हूं यहां पर। हाँ राम, कौन राम, पता नहीं। तो गोपियां नाराज हो गई, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, अगर आप हमारा हमें अपना रूप राम का नहीं दिखाओगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो जब गोपियां ऐसा धमकी देती है तो फिर वो डर जाते हैं और कहते हैं आंखें बंद कर लो। तो वो आंखें बंद कर लेते हैं, और आंखें खोलो, आंखें खोल लेते हैं। जब आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं, उनके सामने बहुत बड़ा सागर, उसके अंदर सेतु बना हुआ है, इस तरफ रामेश्वर है, उस तरफ श्रीलंका है। और अचानक कृष्ण बलराम राम लक्ष्मण बनकर धनुष बाण लेकर, और सब बंदर जो ग्वाल बाल थे सब बंदर बनकर वानर सेना बनकर प्रकट हो जाते हैं एकदम उनके सामने। प्रभु रामचंद्र का दर्शन देते हैं भगवान। अचानक वहां से उस तरफ से एक राक्षस पैदा होता है, 10 मुख वाला, चैलेंज करता राम राम को, उनका युद्ध होता है और राम रावण को मार देते। ये सब गोपियों के आंखों के सामने हो रहा है। फिर कहते हैं भगवान आंख बंद कर लो, फिर आंख बंद कर देते, बोलते खोल लो, खोल लेते। जब खोल लेते हैं तो राम लक्ष्मण दोबारा कृष्ण बलराम बन जाते हैं, सब वानर सेना ग्वाल बाल बन जाते हैं, लेकिन सेतु और समुद्र और रामेश्वर लंका वैसे रहता है। तो भगवान ने गोपियों के आनंद के लिए श्रीलंका सेतु बंद रामेश्वरम सागर हिंदी महासागर वहां पैदा किया। आज भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं, यहां से 25 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर दूर है। तो वैसे ही तो वो काम्य वन में है, वैसे ही जब प्रभु सॉरी यशोदा मई और नंद महाराज को बालक नहीं हो रहा था, तो नंद महाराज ने यशोदा मई ने वचन दिया था कि हमको बालक होगा तो हम 4 धाम की यात्रा करेंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री जमुनोत्री जानते। उसके बाद उनको बालक हुआ, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ गोकुल में, थोड़े बड़े भी हो गए कृष्ण भगवान, तो बाबा को याद आई कि हमने तो वादा किया था, मन्नत मांगी थी, हम 4 धाम की यात्रा करने चलेंगे। तो कृष्ण को ये बात अच्छी लगी नहीं, उन्होंने कहा बाबा ब्रज छोड़ के क्यों जाते हो, ब्रज में सब कुछ है, मैं आपके लिए 4 धाम यहां प्रकट कर देता हूं। तो उन्होंने आंखें बंद कर ली और आंखें खोल ली तो वो साक्षात बद्रीनारायण केदारनाथ यमुनोत्री यमुनोत्री के बीच में थे, हर की पैड़ी गंगा जी अलकनंदा हाँ मानसरोवर सब कुछ था वहां पर। तो बड़े प्रेम से उन्होंने गंगा जमुना में स्नान किया, 4 धाम की यात्रा कर दी वहां पर, धन्य हो गए। आज भी आप जाएंगे उसके आगे 25 किलोमीटर और है, ये जो सेतु बंद है उसके आगे 25 किलोमीटर और आदि बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री हर की पैड़ी और सब कुछ वहां पर उपलब्ध है। फिर गया, आप जानते हैं ना गया, गया में जाकर लोग श्राद्ध करते हैं गंगा किनारे, वो गया भी वहां पर प्रकट किया भगवान ने एक कुंड के रूप में। फिर एक बार नंद बाबा गंगा जी की महिमा में कथा में बैठे थे और कथा चल रही थी, कोई बाबा कथा कर रहे थे, तो कथा ऐसी थी कि गरुड़ जी तो थे, गरुड़ जी सांप को पकड़ते हैं क्योंकि उसका खाते हैं ना वो सांप, सांप को पकड़ के उड़ रहे हैं और अचानक गंगा जी के पास आते हैं और थोड़ा झुक जाते हैं नीचे, पक्षी कैसे ना ऊपर पीछे उड़ता ना, तो हाथ में सांप पकड़कर वो उड़ रहे हैं तो अचानक सांप की जो लटकती हुई पूंछ है वो गंगा जी के जल को स्पर्श करती है, तो अचानक सांप का रूपांतरण विष्णु के दूत में होता है, चतुर्भुज विष्णु दूत बन जाता है। तो गरुड़ को आश्चर्य होता है, अरे मेरे हाथ में सांप था, अभी तो चतुर्भुज आदमी हो गया, वो तो 4 भुजा वाला विष्णु दूत बन गया, इसका नीला शरीर है, मुकुट है, अलंकार पहने हुए, मतलब उसकी मुक्ति हो गई। तो हाथ में रखने के बजाय अपने कंधे पर बिठाकर गरुड़ जी उसको वैकुंठ ले जाते। ये कथा सुन रहे नंद बाबा झट से खड़े होते कहते हमको अभी चलना है गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो कृष्ण भगवान भी वहां बैठे हुए, उनको यहां से बाहर निकलने का आइडिया पसंद नहीं, बाबा आप क्यों बाहर जा रहे हो, नहीं बेटा तुमको जानते नहीं हो गंगा जी का महिमा, गंगा जी का स्नान करना चाहिए, देखा नहीं आपने कथा में सुना ना चतुर्भुज विष्णु दूत का शरीर प्राप्त हो गया, मुक्ति हो गई उसकी। पर कोई बात नहीं हम गंगा जी को ही बुला लेते, अरे बालक है इसको क्या पता। फिर भी उसका बात सुनकर सब लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं और गिरिराज गोवर्धन के बीच में लेके जाते हैं और सबके आंखों के सामने नंद बाबा के आंखों के सामने उनके मन के अंदर से गंगा प्रकट होती है, मगरमच्छ पर बैठी हुई है, अलंकार धारण किए, मुकुट धारण किए हुए और हाथ जोड़ के बोल रही है छोटे से बालक को मेरे लिए क्या आ गया है भगवान। नंद बाबा देख रहे, अरे मेरा बालक बहुत पावरफुल है, गंगा देवी उसको हाथ जोड़कर आदेश मांग रही है क्या करूं सेवा आपकी। और भगवान भी ऐड से कहते हैं आपका जल यहां डालकर बड़ा कुंड बना दो। तो सबके आंखों के सामने गंगा जी वहां पर जल डालती है और विशाल सागर जैसा कुंड बनता है जिसका नाम मानसी गंगा है। तो सबके आंखों से देखा है तो अभी क्या बोलेंगे, और आंखों देखा प्रूफ है उनके पास। तो सब नंद बाबा सब ग्वाल बाल मिलकर वहां पर उसमें स्नान करते हैं और गंगा जी में स्नान करने का पूरा भाग्य प्राप्त होता है। फिर एक बार एक राक्षस आया यहाँ पर, उसका नाम था अरिष्टासुर, वो बैल के शरीर का था, इतना भयंकर था कि उसकी पूंछ से आकाश के बादल हिल रहे थे, उसके नाक से निकलने वाली हवा से तूफान आ रहा था, उसके दौड़ने से पृथ्वी पर भूकंप हो रहा था, ऐसा भयंकर बैल था वो। उसको भगवान कर उसने आक्रमण किया मारने के लिए, वो कंस की तरफ से आया था भगवान को मारने के लिए, तो भगवान ने उसको पीछे के पैर से पकड़ा अभी ये छोटी छोटी कथाएं हैं, अरे क्या भगवान तो ऐसा कैसा सकता है, 7 साल का बालक है, इतना पहाड़ जैसा आकाश में इसका शरीर जा रहा है, इतना बैल था, और 7 साल के बालक ने उसके पैर को पकड़ा, उसको उठाया, घुमाया और पटक दिया। ऐसे हम लोग सुनते हैं, अरे ये सब सच कैसे हो सकता है। लेकिन भगवान बालक है या पलने में बैठे हुए छोटे से बालक है या बड़े पुरुष हो गए द्वारकाधीश, कुछ भी है, भगवान भगवान ही रहते। तो 7 साल के बालक जो है वो बैल को उठाकर पैर से घुमा घुमा कर जमीन पर पटक देते हैं और एक साथ पर मूत्र और लीद डालकर बैल मर जाता है। तो गोपियां कहती है कि तुमने बैल का वध किया है, धर्म का प्रतीक है बैल, तुमने बड़ा पाप किया है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो कृष्ण बहुत व्याकुल हो जाते हैं, अरे आप हमसे बात नहीं करेंगे तो हम जिएंगे कैसे, क्या करना होगा। तो कहते हैं आपको सारे तीर्थों में जाकर स्नान करके आना पड़ेगा, तब शुद्ध हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं मैं क्यों जाऊं सब जगह पे, मैं सबको यही बुला लूंगा। जितने भी पर्वत हैं, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी कुंड हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने पवित्र स्थान हैं, सब कुछ जो है वो व्यक्ति है, भक्त है भगवान के, वो व्यक्ति रूप बनकर ऐसे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं तुरंत वहां पर गोवर्धन के पास। तो कहते क्या सेवा करें। तो भगवान जो है अपने पैर से गड्ढा बनाते और कहते सब लोग यहां पर अपना जल रखो और सब लोग यही बस जाओ। तो सब नदियां कुंड पर्वत, जितनी नदियां झरना कुंड सरोवर जितने भी हैं, पर्वत है, पवित्र स्थान है, सब नदियां देवियां सब वहां बस जाते हैं उस गड्ढे में, और एक बड़ा कुंड बनता है, उसका नाम है श्याम कुंड। तो भगवान वहां पर स्नान करते हैं और सब बाल बाल भी स्नान करते हैं। उस श्याम कुंड में स्नान करने से बाद भगवान आते हैं और राधा रानी गोपियों से कहते हैं कि अभी आप पापी हैं, आपको पाप लग गया है। ना हमने कैसा पाप किया है, बोले कि आपने राक्षस का पक्ष लेकर हमसे विवाद किया। हाँ, यू साइडेड विद द डीमन, आपने राक्षस का पक्ष लेकर हमसे विवाद किया, इसलिए वो पाप आपको भी लग गया है। अभी आपको भी सभी कुंडों में और नदियों में और पर्वतों में जाकर दर्शन करके स्नान करना होगा। तो वो सब सखियां जो है मटका भर के राधा कुंड से, मतलब जहां पर श्याम कुंड बना हुआ है वहां से लेकर लाइन लगाते हैं मानसी गंगा तक, और वहां से मटका भर के ट्रांसफर करके पानी भरना आरंभ करते हैं। राधा रानी अपना कंगन तोड़ती है और कंगन से गड्ढा बनाती है और एक एक मटका भर के पानी आता है 2 किलोमीटर से दूर से, सबको पसीने आ रहे हैं और सभी पर्वत सभी जो कुंड सभी जितने भी तीर्थ स्थान है सब लोग खड़े हैं हाथ जोड़ के, राधा रानी हमको भी सेवा दो, हम तैयार हैं आपके लिए जल डालने के लिए, आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हो। नहीं नहीं, और कृष्ण बोलते हैं कि आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, मेरे कुंड में स्नान कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है आपको। बोलते नहीं, वो आपके कुंड में आपने बैल जो मारा था ना उसका पाप का पाप जो है वो अपने कुंड में है, इसलिए आपके कुंड में हम स्नान नहीं करेंगे, अपना कुंड बनाएंगे। फिर कृष्ण भगवान स्वयं आकर राधा रानी को विनती कर, देखो इतने सारे धाम नदियां हाथ जोड़कर खड़े हैं, उनको भी सेवा दे दो। तो फिर दयालु राधा रानी जो है बड़ी कृपा करती है और उनको हाँ कर देती है। फिर कंगन से बना हुआ जो कंगन का कुंड है उसके अंदर सब जल डाल देते हैं और राधा कुंड बनता है, और राधा कुंड में राधा रानी स्नान करती है। और उस समय कृष्ण भगवान डिक्लेयर कर देते हैं कि राधा कुंड जो है वो मुझे राधा इतना ही प्रिय होगा जितनी राधा मुझे प्रिय है, और जो भी राधा कुंड में स्नान करेगा जितनी मुझे राधा प्रिय है उतना भी वो प्रिय हो जाएगा। और राधा कुंड नहीं होगा, ये स्वयं राधा रानी का द्रव रूप स्वरूप होगा, वो स्वयं राधा रानी होगी, और जो भी इसमें स्नान करेगा वो अनंत कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मेरी और राधा रानी का प्रेम प्राप्त करेगा। राधा कुंड और श्याम कुंड क्या है, सभी जितने भी विश्व में जितने भी धाम और तीर्थ हैं वो सब वहां उपस्थित है, और क्या बचा। जब द्वारका से लौट के भगवान आए गोपियों को मिलने के लिए, तो द्वारका में वो रोते थे गोपियों की याद से, तो उनके आंखों से अश्रु निकलकर एक नदी बनी थी, उसका नाम है गोमती नदी, आज भी द्वारका में है। वहां बड़ा सागर था, अरबी समुद्र है ना, तो गोपियों ने कहा कि हमको भी दिखाओ ना सागर और नदी, हमने सुना है हमारी याद में बहुत रोते थे आप। तो भगवान ने वहां पर गोमती नदी और समुद्र प्रकट किया, समुद्र एक कुंड के रूप में प्रकट किया और गोमती नदी भी कुंड के रूप में प्रकट की। तो आज भी वहां पर यहाँ पर कोशी नाम का गांव है, 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से इस तरफ। वो कोशी क्या है? वो द्वारका है। भगवान ने द्वारका कोशी में प्रकट किया। और कोशी क्या है? नंद बाबा का वो कोष है, मतलब ट्रेजरी, वहां पर धन रखा करते थे। लेकिन वो ब्रज के अंदर की द्वारका है। इस तरह से एक और सुंदर कथा है, यहां से 4 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसका नाम है ऊंचा गांव। वहां पर एक नारद मुनि के अवतार हुए, उनका नाम है नारायण भट्ट गोस्वामी। तो सब ब्रजवासियों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमको त्रिवेणी जाना है। त्रिवेणी मतलब वही इलाहाबाद, गंगा जमुना और सरस्वती नदी वहां पर रहती है, एकत्र होकर उनका मिलाप होता है, संगम होता है। तो नारायण भट्ट जी ने सोचा कि ब्रजवासियों को ब्रज छोड़ के जाने की जरूरत क्या है। तो नारायण भट्ट जी ने तीनों नदियों को प्रकट किया वहां पर, गंगा जमुना और सरस्वती। और तीनों नदियां एक जगह इकट्ठा हो गई और एक कुएं में घुस गई। वो कुआं अभी भी वहां पर है, उसका नाम है त्रिवेणी कूप। वो साक्षात प्रयागराज वहां पर प्रकट होते हैं। और आज भी जब सोमवती अमावस्या आती है ना, मतलब सोमवार के दिन जब अमावस्या गिरती है, उस दिन वहां पर वो प्रकट हो जाता है। और वो कुआं जो है वो भर के बहता है, सब गांव में पानी हो जाता है सोमवती अमावस्या में। ये सोमवती अमावस्या बहुत विचित्र अमावस्या है। सोमवती अमावस्या में राधा कुंड श्याम कुंड में दूध निकलता है। सोमवती अमावस्या में एक यहाँ पर भांडिर बने हैं, वहां पर एक कूप है, कूप मतलब वेल है, कुआं है, जो भगवान ने अपने बंसी से बनाया था। जब वत्सासुर को मारा था तो प्यास बुझाने के लिए वहां पर वेणुकूप बनाया गया था, उसमें भी सोमवती अमावस्या के दिन दूध निकलता है। दूध निकल के वो पूरा भर के बाहर निकल जाता है। ये ब्रजभूमि बड़ी विचित्र भूमि है। एक सी दिशा में जाएंगे तो एक मंदिर है, उसका नाम है नंदी बंदी मंदिर। नंदी देवी बंदी देवी दोनों देवी का मंदिर है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने दर्शन किया हुआ है, उन दो देवियों के चरणों से शुद्ध घी निकलता है। प्योर घी कंटिन्यूअसली निकल रहा है। और पुजारी लोग उसको इकट्ठा करते हैं और दीपक डालते हैं, दीपक में डाल के उसको जलाते रहते हैं। तो घर में ले गए तो उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन निरंतर उनके चरणों से घी निकलते रहते हैं। नंदी बंदी देवी। सो उसके आगे आप जाएंगे 7 किलोमीटर यहां से, तो एक जगह है जिसका नाम है पावन सरोवर। उसका पहले नाम था नंद सरोवर, नंद बाबा का वो प्राइवेट स्नान करने का जगह था। उसमें यशोदा देवी का भी घाट था, उसका नाम है यशोदा घाट। उसमें राधा रानी के लिए बनाया हुआ कुआं भी था, यशोदा कूप उसका नाम है। तो जब भी उसका नाम पावन सरोवर नहीं था, तब नाम था नंद सरोवर। तो एक दिन क्या हुआ कि यशोदा रानी कुछ नमकीन भोजन बना रही थी, कुछ नमकीन आइटम बना रही थी जो लंबे समय तक रहता है। हमारे दिवाली में करते हैं ना, चकली बनाते हैं, करंजी बनाते हैं, कुछ शंकरपाड़े बनाते हैं, वो बहुत दिन टिकता है ना, वो तला हुआ रहता है। वैसे एक नमकीन आइटम का नाम है मटरी। सुना है आपने मटरी? मटरी किसको मालूम है? वो नॉर्थ इंडिया में बनती है ज्यादा करके। तो यशोदा रानी मटरी बना रही थी, तो कृष्ण भगवान आते, भैया क्या बना रही हो? क्योंकि रोज नहीं बनता ना मटरी, जब कहीं जाना होता है दूर तो फिर टिकने के लिए कुछ आइटम बनता है। अरे तो इसको मटरी बना, मटरी बोलते हैं, ये मटरी बना रही है। तो क्यों बना रही हो? क्योंकि नंद बाबा जो तुम्हारे बाबा है ना, वो त्रिवेणी संगम में स्नान करने जा रहे हैं। त्रिवेणी का बड़ा महात्म्य होता है, वहां पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियां एकत्र संगम होता है उनका। वहां पर स्नान करने से बड़ा पुण्य लाभ होता है। तो फिर दोबारा नंद बाबा की बाहर जाने के आइडिया सुनकर कृष्ण भगवान को कष्ट होता है। वो बाबा से मिलते हैं, कहते हैं बाबा आप ऐसे क्यों नहीं करते हो, आप है ना आज मत जाओ, आप कल जाओ, क्योंकि कल का दिन अक्षय तृतीया का दिन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुहूर्त माना गया है। कोई भी अच्छा काम करने के लिए ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, एक ही दिन में आ रहा है, तो आप आज क्यों जाते हो, कल जाओ। मैंने बच्चा तो सही बात कह रहे हैं, गलत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी भी क्या है, आज के कल जाएंगे। तो फिर वो अपने ही कुंड पर उस रात को घर में सोए और बहुत जल्दी उठकर अपने कुंड पे अपने ही सरोवर में स्नान करने गए। तो वहां पर क्या देखते हैं? आप देखते हैं एक लंबा चौड़ा आदमी, राजा का वस्त्र पहनकर, राजा का मुकुट पहनकर, अलंकार पहनकर, उसका बहुत बड़ा तेज है, जिसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, ऐसे तेज पुंज राजा जो है वो नंद सरोवर में स्नान कर रहा है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, इसको कभी देखा नहीं, नंदगांव में कभी देखा नहीं। नंद बाबा तो राजा है नंदगांव के, सब प्रजा को जानते हैं, वो ऐसा आदमी को देखा नहीं और कभी। लेकिन वो स्नान कर रहा है, इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि वो स्नान करके किनारे में आकर धूल में फिर से लोटपोट होके दोबारा पानी में स्नान करता। हम लोग क्या करते हैं कि कुंड में स्नान करेंगे, नदी में स्नान करेंगे, तो स्नान करके बाहर आके कपड़ा पहन लेंगे ना, पहुंच के थोड़ी मट्टी में जाके सोएंगे और फिर दोबारा स्नान करेंगे, वापस आके सोएंगे फिर दोबारा स्नान करेंगे। तो ये राजा जो था वो दोबारा बाहर निकलकर मट्टी में लोटपोट होकर फिर पानी में, फिर मट्टी में, फिर पानी में, फिर मट्टी में, बड़ा आश्चर्य होगा इनको नंद बाबा को, बोले ठीक क्या हो गया। जाके मिलते महाराज जी, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है। तो महाराज जी स्वयं वंदन करते हैं नंद बाबा और कहते हैं कि मैं प्रयागराज हूं, त्रिवेणी संगम, मैं स्वयं यहां पर स्नान करने को आया हूं। बोले क्यों, वो कहते हैं साल भर में सब दुनिया भर के लोग हमारे अंदर आके स्नान करते हैं, अपना पाप छोड़ते हैं, बहुत पाप भर जाता है हमारे अंदर। तो एक दिन हम लोग, मैं एक दिन छुट्टी लेता हूं मेरे काम से, कैजुअल लीव लेता हूं और त्रिवेणी छोड़ के यहां सरोवर में आके स्नान करके अपने पाप को नष्ट कर देता हूं। बोले अच्छा, स्वयं प्रयागराज यहां पर स्नान करने को आ रहे हैं, मुझे वहां जाने की जरूरत क्या है। इतने में देखते हैं वो अपोजिट साइड में कुंड के उस किनारे में देखते हैं कि बहुत सारी देवियां खड़ी हैं, बहुत सुंदर देवियां, बहुत प्रकाशमान उनका शरीर है, बहुत मुकुट पहने हुए, अलंकार राज वस्त्र पहनी हुई है, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। तो नंद बाबा वो पार करके वहां पहुंचते हैं, बोले देवियों आप कौन हो। वो सब देवियां कहते हैं मैं गंगा हूं, मैं सरस्वती हूं, मैं कावेरी हूं, मैं सिंधु हूं, नर्मदा हूं, गोदावरी हूं, सब नाम लेते हैं। आप लोग यहां क्या कर रहे हैं, साल भर में सब लोग हमारे अंदर स्नान करके सब पाप छोड़ते हैं, बहुत पाप का अकाउंट बढ़ जाता है, हम लोग छुट्टी लेकर एक दिन यहां पर आते हैं अक्षय तृतीया के दिन, आप यहां स्नान करके अपने पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। नंद बाबा वही अपना प्रयाग जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। इसलिए उस कुंड का नाम उस दिन से क्या पड़ा, पावन सरोवर। वो सभी पावन करने वाले कुंडों को, सरोवरों को और नदियों को भी पावन कर देता है, वो है पावन सरोवर। तो इस तरह से सभी प्रकार के जितने भी धाम है वो सब लोग यहां पर आश्रय ले चुके हैं। एक विशेष बात समझने जैसी है, वो ये है कि जब हम हिमालय में जाएंगे या बद्री केदार जाएंगे या गया में जाएंगे या श्रीलंका में जाएंगे या सेतु बंद रामेश्वर में जाएंगे, जितने भी धाम में जाएंगे, लाभ एक ही है वहां का, वो ये है कि आप पाप से नष्ट हो जाएंगे, लेकिन भक्ति मिलेगी ये गारंटी नहीं है। लेकिन वही धाम जब यहां ब्रज भूमि में आश्रय लेते हैं और वहां पर हम जाते हैं ब्रज भूमि के अंदर उस धाम को मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो पाप नष्ट होते हैं और पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। अरे आप बोलेंगे गड़बड़ मामला है पूरा, पुण्य चाहिए ना हमको, पुण्य के लिए तो आते हैं यहां पर, लेकिन नहीं सर, आपको पता नहीं और पता होना जरूरी है, आप यहां बरसाने में बैठे हो, आपको सबको पता होना चाहिए कि पाप और पुण्य एक ही जैसे होते हैं। फिर कंफ्यूजन, हमने तो कोई सुना नहीं था ऐसे कि पाप और पुण्य एक जैसे होते हैं, पाप खराब होता है पुण्य अच्छा होता है, यह हमने बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन शास्त्र कहता है नहीं, पाप करने से भी जन्म लेना पड़ता है और पुण्य करने से भी जन्म लेना पड़ता है। पाप करने के बाद भी पाप का फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है और पुण्य करने के बाद पुण्य का फल भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ता है, और दोनों का भोग जो है अच्छा और बुरा भोग यहीं पर होता है। इसलिए भक्तों के लिए पुण्य भी खराब है, क्योंकि पुण्य का अकाउंट बढ़ा दिया तो स्वर्ग में जन्म लेना पड़ेगा, वहां पर आनंद लेना पड़ेगा, जो पुण्य के उसका परिणाम वहां अच्छा परिणाम आनंद लेंगे आप जाके। लेकिन भक्त लोग जो है वो स्वर्ग का भी वास नहीं चाहते, ना स्वर्ग का वास चाहते हैं, ना पृथ्वी पर रहना चाहते हैं, ना नरक में रहना चाहते हैं, वो भगवान के धाम में रहना चाहते हैं। और भगवान के धाम में रहने के लिए योग्य बनना है तो पाप और पुण्य का अकाउंट या नष्ट करना पड़ेगा, तब जाकर हमको वहां पर एंट्री मिलेगी। इसलिए सारे जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं, वहां जाएंगे इन पर स्नान करने के लिए तो पाप नष्ट कर देंगे, लेकिन वही जो यहां पर आएंगे वो तीर्थ और यहां पर आप उनको मिलेंगे तो वो पाप के साथ पुण्य भी नष्ट करेंगे। और यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है। जब यहां पर आप आदिबद्री केदार पावन सरोवर राधा कुंड श्याम कुंड यहां कहीं भी जाएंगे तो पाप पुण्य नष्ट करने के साथ में प्रेम और भक्ति भी मिलेगी आपको। जमुना जी जो है, गंगा जी जो है ना, यमुना जी यमुना दृष्टि निकलती है और बहुत यात्रा करते हुए दिल्ली करते हुए फिर ब्रज में प्रवेश करती है वृंदावन धाम में। और यहां पर घूमकर पूरा वृंदावन को प्रदक्षिणा करके फिर वो आगे चले जाती है ब्रज को छोड़कर। ब्रज के छोड़कर जितनी भी यमुना जी जहां भी है आप अगर उसमें स्नान करेंगे तो केवल पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ब्रज में यमुना जी प्रवेश करती है आप उसमें स्नान करेंगे तो पुण्य भी नष्ट होगा पाप भी नष्ट होगा और साथ में आपको प्रेम भक्ति भी मिलेगी। एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में यमुना जी में स्नान कर रहे थे तो किनारे में किसी ने कहा कि अरे यमुना जी में स्नान करने से पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ भक्त लोग भाग के बाहर आ गए, अरे पुण्य भी नष्ट हो रहे हैं। बोले ऐसा मत समझना, हम लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए यमुना जी में स्नान नहीं कर रहे, ये सब कर्मकांडी लोगों का काम है। पुण्य इकट्ठा करना, पाप नष्ट करना, पुण्य इकट्ठा करना, यज्ञ करना, दान करना और नदी में स्नान करना, भक्त लोगों का काम ये नहीं होता है। भक्त लोग केवल भक्ति चाहते हैं, इसलिए वो बड़े प्रेम से ये जानते हुए कि पाप और पुण्य दोनों नष्ट होने वाले ये समझकर ये यमुना जी में स्नान कर देते हैं क्योंकि वो उनको भक्ति प्रदान करने वाली है। यही कहानी गंगा जी की भी है, जहां पर भी गंगा जी में स्नान करेंगे पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही गंगा नदी मायापुर नवद्वीप धाम में प्रवेश करती है तो वहां पर आप स्नान करेंगे उसके अंदर जमुना गंगा जी के अंदर तो आपको पाप पुण्य नष्ट करके भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, वहां पर प्रेम प्राप्त होगा। तो धाम का जो महात्म्य है वो ब्रज में आश्रय लेने के बाद में हजारों गुना बढ़ जाता है। जो जहां पर मूल स्थान में बैठे हैं वहां उनके अंदर उतनी शक्ति नहीं होती है जितनी शक्ति उन धामों की यहां होती है जब वो यहां पर आश्रय लेते हैं। इसलिए ब्रज जो है वो अति परिपूर्ण है, ब्रज के अंदर हर चीज जो है वो परिपूर्ण है। गोमती में स्नान करके द्वारका में जो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा, वो यहां पर आकर मिलेगा। पाप पुण्य नष्ट करके आपको भक्ति मिलेगी उससे, द्वारका में नहीं मिलेगा, ये महात्म्य है उसका। इसलिए भगवान ने कभी भी ब्रज को यहां से बाहर जाने के लिए किसी को एनकरेज नहीं किया। जब भी ऐसा मौका आया, बात हुई, भगवान ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और यहीं पर उस धाम को प्रकट कर दिया उन्होंने। जब जब बात हुई तब तब यही धाम को प्रकट किया उन्होंने। ये ब्रजवासियों को और हम सबको विश्वास दिलाने के लिए कि ये धाम जो है वो परिपूर्ण है, यहां पर आने के बाद में और कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये सबसे परिपूर्ण धाम है। इसकी यात्रा करने के बाद में और किसी धाम की यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये भगवान का चरम धाम है और भगवान का गौड़ वृंदावन जो चरम धाम है उसका हिस्सा है। सारे वैकुंठवासी, सारे वैकुंठ के विष्णु भगवान, सारे देवता, सभी लोग वहां जाना चाहते हैं। वो चरम धाम यहां पर ब्रज के रूप में प्रकट हुआ है। और एक मैं आपको कहानी बताता हूं कैसे कैसे यहां पर दिव्य धाम प्रकट हुए। भगवान जब लीला कर रहे थे तो टाइम बहुत कम, मैंने बता दूंगा फिर कहानी में। तब एक राजा था बिमल नाम का, वो सिंधु देश में उसका राज्य था, उसको करोड़ों कन्या हुई थी, करोड़ों कन्या, एक दो नहीं। जब वो बड़ी हुए तो उनको चिंता होने लगी शादी कैसे करूंगा। तो नारद मुनि को जब वहां पर आते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या करे क्या अभी, एक दो नहीं है करोड़ों कन्याएं, मैंने पढ़ा था कि उनको 3 करोड़ कन्या थी। बड़े चिंतित थे राजा। तो नारद मुनि ध्यान लगाकर बैठते हैं और सुनते हैं कि ध्यान लगाकर देखते हैं, दर्शन करते हैं और आंख खोल के बताते हैं, राजा तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारी 3 करोड़ कन्याओं का विवाह परम भगवान कृष्ण से होने वाला है, इसलिए इंतजार करो, अपने दूत को भेजो ब्रज में, वहां पर भगवान अवतार लिए बालक बनकर लीला कर रहे हैं, जाकर उनको दूध मिलकर दूध से भेजकर उनसे वार्तालाप करो और प्रस्ताव रखो कि हमारी 3 करोड़ कन्या आपसे विवाह करना चाहती है। तो दूत आया तो उस समय नारद मुनि ने दूत को बताया था कि कैसे पहचानना है उनको। तो वो कहते हैं कि वो 4 भुजा वाले हैं, नीले रंग के होंगे, मोर पंखधारी होंगे, बंसी वाले होंगे, खेलते होंगे बालक तो बालकों के साथ में। जो वर्णन था ना उनका, जब भी वो देवकी के सामने प्रकट हो गए थे, वो उन्होंने वर्णन किया उनका, चार भुजा थी ना उनकी। तो दूत आए वृंदावन में, देखा, अरे देखा बालक खेल रहे हैं, नंद बाबा का बालक, नंद बाबा का जो कृष्ण भगवान है, बलराम सब खेल रहे हैं। तो बड़े गौर से देखते हैं नीले बालक को, हाँ मोरपंख भी है, बंसुरी भी है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि चार भुजा नहीं, दो भुजा है। तो कहते हैं गलत नंबर है, फिर ये सही नहीं है बिल्कुल। तो नाराज होकर लौट के आता है, विमल बहुत दुखी हो जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, बालक तो मिल गया लेकिन वो दो भुजा वाला था, चार भुजा वाला नहीं था। फिर नारद मुनि कंसल्ट करते हैं, नहीं, उस समय पे सिंधु देश में भीष्मदेव आते हैं दिग्विजय करने के, तब भीष्मदेव बहुत जवान थे, वो दिग्विजय करने के लिए सिंधु नरेश के पास आते हैं, और सिंधु नरेश जो विमल राजा है वो दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको युद्ध करने की इच्छा नहीं रहती, उनको आप जो कहें आपका दास बनने को हम तैयार है, हमारी एक समस्या है वो आपका समाधान करो। नारद मुनि ने ऐसे ऐसे कहा था, बालक तो मिल गया लेकिन वो दो भुजा वाला था, इसका रहस्य क्या है? तो भीष्मदेव ये सब जानते थे, सब रहस्य। तो भीष्मदेव ने विमल राजा को बताया कि जब भी देवकी ने विधि की भगवान विष्णु को कि तुम चार भुजा में मत आओ, दो भुजा वाला रूप धारण करके आ जाओ, मुझे डर लग रहा है कि कंस आपको आक्रमण करके आपका नाश करेगा, इसलिए आप भगवान बनकर मेरे सामने मत आओ, एक बालक बनकर आ जाओ। तो उनकी इच्छा से ये चार भुजा वाला जो भगवान था वो दो भुजा वाला बन गया, और उसी रूप में उनको गोकुल में लाया गया, और वहां से वृंदावन आकर बड़ा होकर अभी खेल रहा है। तो दोबारा दूत गया और देखा कि हाँ यही है, और कृष्ण भगवान अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि दूत किस लिए आया है, इसलिए बालकों को बाजू में करके एकांत में जाकर दूत से मिलता है। और कन्हैया जी कहते हैं कि क्या चाहते हो? वो कहते कि विमल राजा का दूत हूं और मैं 3 करोड़ कन्याओं का विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास में आया। तो भगवान तुरंत वहां से अंतर्धान होते हैं और दूत के साथ में हवा में उड़कर सिंधु नरेश के राज्य में पहुंच जाते हैं, सिंधु राज्य में, सिंधु देश में। और वहां पर सिंधु नरेश विमल राजा था, अनेक कुंडों में एक साथ में ऋषियों को मुनियों को लेकर यज्ञ कर रहा था। जब भू कृष्ण को हवाई मार्ग से आते हुए देखता है, तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और अपने 3 करोड़ कन्याओं को वहां बुलाकर वहीं पर उनका विवाह लगा देता है, विवाह कर देता है। तो एक साथ भगवान 3 करोड़ कन्याओं के साथ विवाह करते हैं और उनको लेकर काम्य वन में आते हैं, सिंधु देश से लेकर अपनी पत्नियों को लेकर वो काम्य वन में आते हैं। यहां पर ब्रज में दूसरे रूप में वो लीला चली रही है उनकी, किसी को पता नहीं कहां गए वो, लेकिन अपना रूप विस्तार करके दूसरा रूप धारण करके वो काम्य वन में आते हैं और काम्य वन में 3 करोड़ कन्याओं के साथ में राज नृत्य करते हैं। जब वो राज नृत्य करते हैं तो भगवान कृष्ण और 3 करोड़ पत्नियां जो बन गई है भगवान की, उनके शरीर से स्वेद निकलता है, यानी कि जिसको हम इस दुनिया में पसीना कहते हैं, जिसकी बदबू आती है दुनिया में, लेकिन वो स्वेद जो है वो दिव्य होता है, वो स्वेद जो है वो द्रव 3 करोड़ कन्याओं के शरीर से और भगवान के शरीर से प्रकट होता है और वो एकत्र होकर बनता है विमल कुंड। उस विमल कुंड के अंदर 84,000 तीर्थ तुरंत आश्रय लेते हैं, क्योंकि भगवान के पत्नियों के शरीर से निकला हुआ, स्वेद से बना हुआ इतना दिव्य जल के अंदर कौन नहीं चाहेगा आश्रय लेना। तो 84,000 तीर्थ जो दुनिया के हैं वो आकर वहां पर बस जाते हैं, उसका नाम है विमल कुंड, वो काम्य वन में। परशुराम जी भी काम्य वन में आते हैं और 9 कुंड स्थापन करते हैं, मतलब परशुराम जी भी वहां पर आए। वनवास काल में पांडव भी वहां पर उन्होंने निवास किया था, वहां पर एक पांडव कुंड है, धर्मराज कुंड कहते हैं, और वहीं पर धर्मराज की परीक्षा हुई थी कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर जल लो, वो वाला जो लीला लीला है ना वो धर्मराज कुंड भी हुई, तो वहां पर पांडवों ने निवास किया है। गणेश जी ने वहां पर बलि महाराज को परास्त किया है, बलि महाराज ने एक बार देवताओं से युद्ध करके बहुत देवताओं को त्रस्त कर दिया था कंप्लीट, तब देवता लोग भाग के गणेश जी के पास गए थे, अरे शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने कहा मेरे पुत्र के पास जाओ। तो गणेश जी ने देवताओं की इच्छा के अनुसार काम्य वन में बलि महाराज को जो इतने तेज से भरे हुए थे युद्ध में मूर्छित कर दिया उसको, और बलि महाराज भाग गए वहां से। ये पराक्रम देखकर भगवान ने गणेश जी को वहीं पर बसने का वरदान दे दिया, इसलिए गणेश जी काम्य वन में विराजमान है। अन्य देवताओं को ब्रज में आश्रय नहीं है, ये ब्रज इतना महान है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों जो प्रमुख देवता हैं, जो विष्णु का नियंत्रण करते हैं, ब्रह्मा निर्माण करते हैं, विष्णु उसको व्यवस्थापन करते हैं और शिवजी उसको नष्ट कर देते हैं समय के अनुसार। इसको तीन त्रिदेव कहते हैं इस दुनिया के। ये तीनों देव इस ब्रजभूमि के अंदर पत्थर बनकर बैठे हुए हैं ताकि भगवान उन पर चढ़कर लीला करें। ब्रह्मा जी यहां विराजमान है ब्रह्माचल के रूप में। स्वयं ब्रह्मा जी तपस्या किया सत्ययुग के पहले 60,000 साल, सत्ययुग के अंत में 60,000 साल, ऐसे 120,000 साल तपस्या किया ब्रह्मा जी ने, तब जाकर भगवान ने उनको दर्शन दिया। बोलो क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप और आपके सखा और सखियां मेरे ऊपर चलकर लीला करें और मुझ पर अपनी चरणों की धूल रखें और मुझे आपकी लीलाओं का दर्शन मिले, यही मेरी इच्छा है। तो भगवान कहते हैं विश्वभानुपुरम गत्वा, विश्वभानुपुर चले जाओ, यहां पर राजा रानी विराजती हैं, वहां पर पर्वत बनो। तो ब्रह्मा जी चार मुख वाले यहां पर आकर पत्थर बने, इसलिए यहां का पर्वत जो है चार मुख वाला है, चार चोटी वाला है। शिवजी महाराज ने भी यही तपस्या किया और यही मांग की कि आपके सखाओं के चरणों की धूल प्राप्त होनी चाहिए। भगवान ने कहा नंदगांव चले जाओ, इसलिए नंदीश्वर जो है वो स्वयं शिवजी महाराज पत्थर बनकर पर्वत बनकर वहां पड़े हुए हैं, उन पर उसके ऊपर नंद भवन है। और विष्णु कहां गए? विष्णु गोवर्धन पर्वत बने, स्वयं विष्णु इस विश्व के नियंता और चालन करने वाले पर्वत बनकर यहां पर विराजमान है, भगवान को आनंद देने। आप समझ सकते हैं या भूमि का महात्म्य क्या है? फिर शिवजी और पार्वती जी ने तपस्या किया। पहले शिवजी ने पार्वती को मंत्र दिया जिससे पार्वती ने विष्णु को प्रसन्न किया, फिर विष्णु ने उनको एक मंत्र दिया राजा रानी के नाम का, और राजा रानी का नाम लेकर उनको 3 महीने का एक व्रत करने को बताया। उसका सुंदर वर्णन ब्रह्म मुहूर्त पुराण में आता है, बहुत लंबा वर्णन है कैसे पार्वती जी ने शिव जी की सहायता से यह व्रत किया, त्रैमासिक व्रत। उसमें एक फूल है उसका नाम है सौगंधी का फूल, उसमें 1,000 पकौड़ियां होती है सौगंधी का फूल, जो मानसरोवर में सती देवी यानी पार्वती देवी ने एक कुंड बनवाकर यक्ष और गणों के साथ में उसको बनाया, और रोज 1,008 इससे नंबर के फूल वो इस व्रत में अर्पण किया करती थी व्रत के साथ। और इसके व्रत के अंत में यही जो फूल है जिसकी खुशबू से द्रौपदी बहुत व्याकुल हो गई थी, उन्होंने कहा कि भीम को जाके ये फूल लेके आओ। जब भीम हिमालय में गए थे रास्ता में उनकी हनुमान जी की मुलाकात हुई, पता है ना आपको ये कथा, उसकी कोच भी भीम उठा नहीं पाए, हनुमान जी दर्शन दिया उनको, तो उसी सौगंधी का फूल की खोज में हनुमान भीम से निकले थे। वही जो फूल है सौगंधी का, उसका जो बगीचा है वो पार्वती देवी ने इस व्रत के लिए उसको उत्पन्न किया था। तो इस व्रत के साथ में 3 महीने के बाद में राधा और कृष्ण ने शिवजी पार्वती को दर्शन दिया है, उनको वरदान दिया है कि आप दोनों निरंतर ब्रज में निवास कर सकते हो, बाकी किसी भी देवता को ब्रज में प्रवेश नहीं है। एक गणेश जी, एक शिव जी, पार्वती जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ मतलब वही शिव जी, और हनुमान जी, उन्हें रक्षा करने के लिए ऑन ड्यूटी है, रहने के लिए नहीं आए, बाकी इंद्र आदि किसी भी देवता को यहां प्रवेश नहीं, इतना दिव्य धाम है। और जो पार्वती देवी हैं वो नंदी बंदी देवी ऐसे अनेक प्रकार के रूप से यहां विराजती हैं, और भगवान की लीला में पूर्णमासी के रूप में सहभाग लेती है। पूर्णमासी सांदीपनि मुनि की माता बनकर आई थी, और पूर्णमासी सभी गोपियों की गुरु होती थी, सब गुरु गुरु जब गोपियां थी यशोदा रानी उनको गुरु मानती थी और उनसे सलाह करके ही काम करती थी, वो पूर्णमासी गोपी बनकर यहां पर आई। यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है अक्रूर घाट। अक्रूर घाट पे भगवान ने सभी ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया था। इतना सुंदर धाम है, अक्रूर तीर्थ कहते हैं। ये हुआ श्री वृंदावन धाम का महात्म्य। लेकिन इससे भी आगे कुछ चीज है, ये भूलना मत। ये वृंदावन धाम में भगवान अपना भगवान का स्वरूप छोड़कर एक साधारण व्यक्ति बनकर रहते हैं। 10 साल तक उन्होंने बालक बनकर यहां लीला किया, गिरिराज को उठाया, राज नृत्य किया, बहुत सारा लीला किया उन्होंने। और पूरे विश्व के निर्माण के अंदर, सृजन के अंदर, क्रिएशन के अंदर जितने भी जीव हैं, जितने भी तपस्वी हैं, जितने भी साधु हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी योगी हैं, जितने भी तपी हैं, वो सब लोग भगवान के चरणों की धूल प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के चरणों की भक्ति करना चाहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति भगवान जिनके पीछे सब दुनिया पागल है, इतना सारा तपस्या योग साधना करने के पश्चात भी उन सब ध्यानियों और तपियों को और ज्ञानियों को भगवान के चरणों के नाखूनों के द्वारा निकलने वाले अनंत किरणों में से एक भी किरण का दर्शन नहीं होता है। भगवान के चरण जो है ना, उसके अंदर से बहुत प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश का एक किरण भी दर्शन नहीं होता है उनको। वही भगवान जिनके चरण इतने दुर्लभ हैं, जिनके चरणों की भूल चरने की चरणों की धूल और चरणों की भक्ति इतनी दुर्लभ है, वो भगवान बरसाने में आते हैं और राजा रानी के चरणों की धूल चाहते हैं। वो भी अपनी साधना करते हैं, सब लोग उनके नाम की साधना करते हैं, और वो भगवान जिनका नाम सब जपते हैं वो स्वयं भी अपना जप करते हैं। उनका इष्ट कौन है? श्रीमती राधा रानी। उनका नाम वो एकांत में जाकर, वन में जाकर बैठकर आंख बंद करके जपते रहते हैं। वही भगवान जिनकी मुरली की आवाज से पूरी दुनिया मोहित हो जाती है, पागल हो जाती है, अपने आप को भूल जाती है पूरे विश्व की दुनिया, वही मुरली को भगवान कहते हैं। देखो मुरली, मैं तुम पर प्रेम इसलिए करता हूं कि तुम हमेशा राधा का नाम जपती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा होठों पर लगाए रखता हूं, क्योंकि तुम राधा रानी का नाम हमेशा जपती रहती हो, इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो ये मुरली जो है, जो दुनिया को मोहित करती है, वो भी राधा रानी का नाम जपती है, भगवान भी जपते हैं। ऐसे कई प्रसंग में वर्णन आता है कि भगवान एकांत में जाकर राधा रानी का नाम जब जपते हैं तो उनका सांवला रंग जाता है और स्वर्ण का रंग आ जाता है। ही बिकम्स गोल्डन येलो फ्रॉम डार्क ब्लू कलर। मतलब क्या है? वो राधा रानी का शरीर जो रंग है वो धारण कर लेती है, वो राधामय बन जाते हैं, ऐसा वर्णन आया है। यहां पर ऐसा धाम है कि श्री जी महारानी राधा रानी के चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए सभी देवता, सभी योगी तपी सब लोग आके पुकार देते हैं, यहां पर पुकार लगाते हैं, टेर लगाते हैं, बुलाते हैं, भगवान भी आकर उनको बुलाते हैं। और जब वो नहीं प्राप्त होती हैं तो यहां के रज में भगवान लोटपोट हो जाते हैं, मतलब ही रोल्स इन द डस्ट ऑफ दिस प्लेस। यहां पर आकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्री जी महारानी का एक कृपा कटाक्ष उनको प्राप्त हो जाए। जब वो नाराज होते हैं कभी कभी तो वो रोते हैं, उनकी याचना करते हैं। स्वयं शिव जी भगवान उधर मान मंदिर के नीचे कुंड है, उसका नाम है माहेश्वरी सर, बिहार कुंड कहते हैं उसे। शिव जी स्वयं आकर वहां पर गोपी बनते हैं और श्रृंगार करने का प्रयास करते हैं, सुंदर गोपी बनने का, तो पार्वती जी वहां प्रकट हो जाती है। वो गौरी है ना, गौरी, तो गौरी प्रकट होते हैं, पूरा प्रकाश वहां पर होता है, इसलिए उसको गौरी कुंड भी कहा है। उस कुंड को गौरी कुंड भी कहा है, बिहार कुंड भी कहते हैं और माहेश्वरी सर भी कहते हैं। तो पार्वती जी, गौरी जी शिव जी का प्रयत्न देखकर हंसती है वहां पर, अरे आपको सखी बनना नहीं आता है, हमसे सीखो, हम आपका श्रृंगार करेंगे। तो पार्वती जी अपने पति का गोपी रूप में स्वयं श्रृंगार करते हैं और गोपी बनाकर, गोपेश्वर बनाकर उनको बोलते अभी जाओ और श्री जी की आराधना करो। तो वो श्री जी की आराधना करने के लिए शिव जी जाते हैं और पहाड़ पर नीचे बैठकर पुकार लगाते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा माहेश्वरी सर। महेश्वर और माहेश्वरी, यानी कि जो महेश्वर है महेश जी वो गोपी बन जाते हैं, ऐसा धाम है। यहाँ पर सभी बड़े बड़े लोग जो हैं देवता, स्वयं देवताओं के देवता, परम देवता श्री कृष्ण भगवान भी आकर उनको आवाज लगाते हैं। आप बोलिए जय जय श्री राधे, ये उनको पुकारने की जगह है क्योंकि वो कृष्ण स्वामिनी है। एक सुंदर कहानी है, जो चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में आए, जब वो वन में जा रहे थे, बहुत घटनाएं हुई, अभी तो दूसरी बार बताएंगे। अभी एक घटना ऐसे हुई कि जब वो वन से जा रहे थे तो अचानक एक पेड़ पर एक तोता और मैना बैठी है, वो अचानक उड़ के उनके हाथ के उंगली में आके बैठ जाते और बात करने लगते हैं एक दूसरे से। तो तोता कहता है हमारे कृष्ण जो हैं कितने सुंदर हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने शक्तिशाली हैं, कितने प्रभावशाली हैं, उसका गौरव करते हैं भगवान कृष्ण का। तो जो मैना है वो सब सुन लेती है, कुछ बोलती नहीं। जब तोता बोलना बंद कर देते हैं तो मैना कहती है आप जो कुछ कह रहे हो कृष्ण के बारे में सब कुछ सही है, लेकिन कृष्ण का जो भी गौरव आपने किया है तब तक सही है जब तक राधा रानी उनके साथ में है, क्योंकि राधा रानी साथ में होने से वो सुंदर हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, अच्छी मुरली बजा लेते हैं, अच्छा नृत्य कर लेते हैं, गिरिराज को उठा देते हैं, सब कुछ करते हैं क्योंकि राधा रानी उनके साथ में होती है। तो इसका प्रूफ क्या है कि जब वो राधा रानी से दूर हो जाते हैं तो क्या होते हैं, केवल रोते रहते हैं। कोई भी जो आप वर्णन किया हुआ है उसका एक भी गुण प्रकट नहीं होता है, क्योंकि उनके विरह में वो केवल रोते रहते हैं। जो कुछ आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन राधा रानी के होने से सही है, नहीं होने से सही नहीं है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ, राधा हुआ कि कृष्ण हुआ। फिर वो राधा का गौरव, कृष्ण का गौरव करते हैं, फिर वो शांत रहती है और कहती है ये भी सही है आप जो कह रहे हो, भगवान का जो गुणगान कर रहे हो वो भी सही है, लेकिन सब कुछ तब होता है जब राधा रानी कृष्ण के साथ में होती है। चैतन्य महाप्रभु सुन रहे संवाद सुख और सारी का, तोता और मैना का, और अचानक फिर वो उड़कर डाल को जाके बैठ जाते हैं और महाप्रभु चैतन्य उनको देखते रहते हैं, अरे ये भी कोई संवाद हुआ जो मैंने सुना, ऐसा मानते हैं। ब्रज जो है वो पूरा रस का सागर है, भगवान अपने दिव्य रस प्रेममय रसिक रस का यहां पर विकास करते हैं, लेकिन वो सारे रस जो है वो राधा रानी के चरणों से निकलते हैं और वो यहां निकलते हैं बरसाने के अंदर, और यहीं से पूरे ब्रज में वृंदावन धाम में उसका विकास होता है। जब राधा रानी चलती है तो उनके नुपुर यानी कि पायल की आवाज की जो ध्वनि निकलती है उसमें से वेद निर्माण हो जाती है। जो वेद हम सुनते हैं, वेद ज्ञान सुनते हैं श्लोक के रूप में, उसको हम श्रुति कहते हैं, श्रुति। वो सारी श्रुतियां जो है वो राधा रानी के चरणों से प्रकट होती है और फिर उसका विकास होता है, फिर लोग उसको प्राप्त करते हैं, समझते हैं, उसको जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। जिन वेदों के माध्यम से हम भगवान कृष्ण को जानते हैं वो वेद राधा रानी के चरणों से प्रकट होते हैं। राधा रानी कृष्ण स्वामिनी है, सबके स्वामी कृष्ण है और उनके स्वामिनी राधा रानी है। अगर राधा रानी और कृष्ण भगवान अगर प्रेम का सागर है तो राधा रानी उस प्रेम के सागर में आया हुआ नवनीत है, यानी कि मक्खन की तरह, जैसे कि दूध में से सार के रूप में मक्खन निकलता है ना। अगर भगवान का प्रेम जो है वो सागर की तरह है तो राधा रानी उसका कॉन्सेंट्रेटेड स्वरूप है। क्या क्या वर्णन करें उनका, तो ये इस धाम में आप लोग बैठे हुए हैं और इस धाम में वही जीव जन्म लेते हैं जो अपने पिछले जन्मों के अंदर कई अनंत पुण्य कर चुके हैं, भगवान के भक्तों की सेवा कर चुके हैं, भगवान के भक्ति की अभिलाषा कर चुके हैं, राधा रानी को प्रसन्न कर चुके हैं, वही जीव यहां पर जन्म लेते हैं जिनको ब्रजवासी कहते हैं। और उनके लिए इस जीवन के बाद में दूसरा जन्म नहीं होता है, ये उनका आखिरी जन्म है। यहां पर जन्म लेने के बाद जो भी कार्य करते हैं जीवन के अंत में भगवान को राधा रानी को प्राप्त करते हैं। वो विशेष जीव जो है उनकी सेवा करने के लिए हम लोग यहां पर हैं, तो राधा रानी को बहुत प्रिय है। ये मत समझना कि वो गरीब है, दिखने में सुंदर नहीं है, अनपढ़ है, एकदम गंवार है, गांव के लोग हैं, कुछ साधन नहीं उनके पास, बहुत पुअर पीपल, ऐसा मत समझना। राधा रानी अपने आप में बहुत समर्थ है उनकी देखभाल करने के लिए, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए सेवा देने के लिए वो उनको ऐसी अवस्था में रखते हैं। और भी उसका एक कारण है, वो ऐसी अवस्था में क्यों रखते हैं, क्योंकि हम जैसे लोगों के पास जब पैसा आता है तो हम उस पर गर्व करते हैं। हम जब बहुत पढ़े लिखते हैं तो उस पर हम गर्व करते हैं, हम लोग इतने पढ़े हैं, PhD हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, हमारे पास 2 डिग्रियां हैं, 3 डिग्रियां, MBA किया है। तो ज्ञान पर भी गर्व करते हैं लोग, धन पर गर्व करते हैं। आजकल कलयुग में तो ज्ञान को कोई मानता नहीं है, पैसा है तो सब कुछ है। अंगूठा छाप आदमी भी अगर करोड़पति होगा तो लोग सम्मान करते हैं उसका। पुराने जमाने में ज्ञान का आदर क्या करते थे, ब्राह्मण गरीब लेकिन ज्ञान से बड़ा तो उसका सम्मान करते थे, धनी आदमी भी उनके चरणों में वंदन करते थे। आज ब्राह्मण का ब्राह्मण भी जाकर धनवान के पास आके दंडवत करता है, वो कलयुग का प्रभाव है। लेकिन साधारण तौर पर धन पर लोग गर्व करते हैं, विद्या पर लोग गर्व करते हैं। कोई आदमी अगर इतना सुंदर भी नहीं होगा लेकिन बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बुद्धिमान है, लोग बहुत प्रभावित होते हैं। तीसरी वस्तु है सुंदरता। हाँ, बुद्धि कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत सुंदर है तो लोग उसको देखकर आकर्षित हो जाते हैं, होते हैं ना कि नहीं होते हैं। वो जो सुंदर होता है बड़ा गर्व करता है अपने ऊपर कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितनी सुंदर हूं। तो भगवान अपने भक्तों को गर्व से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए ना उनको धन देते हैं, ना उन विद्या देते हैं, ना सुंदरता देते हैं। इसलिए यहाँ के लोग दिखने में भी ज्यादा सुंदर नहीं होते हैं, ना धनवान भी नहीं होते, गरीब होते हैं और बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। गर्व किस पे करेंगे वो करके, जिसके पास कुछ धन है, कुछ विद्या है, कुछ सुंदरता है, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ एसेट है, तो वो गर्व करेगा ना। यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो क्या गर्व करेंगे। तो हमेशा नम्रता में रहेंगे वो, और नम्रता से ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। याद रखना, जब आदमी अहंकार से चूर हो जाता है तो भगवान से दूर चला जाता है, और अहंकार नष्ट होता है तो भगवान के पास में आता है। अगर हमारे अंदर अनंत दुर्गुण होंगे लेकिन नम्रता होगी तो नम्रता के बल पर सारे दुर्गुण नष्ट हो सकते हैं। नम्रता एक ऐसा गुण है कि अनंत दुर्गुण होने के पश्चात भी वो होने पर भगवान का ध्यान, राधा रानी का ध्यान हमारी ओर आकर्षित होता है। इसलिए यहां पर उन लोगों की सेवा हमको मिलती है और उनके माध्यम से हम राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहां पर आए। उनकी सेवा तो हो ही रही है, वो अंधे हैं तो उनको दृष्टि प्राप्त तो हो ही रही है, वो तो हमको करना ही करना है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन उसका अंदर का कारण यह है, ये राधा रानी का धाम है। हम ऐसा जरूरतमंद ऑपरेशन जो है वो थाना में भी कर सकते हैं, या घाटकोपर में भी कर सकते हैं, या तो पालघर में भी कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। लेकिन वो करते हुए यहां पर भी आके कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये जो है वो केवल गरीब लोग नहीं है, ये राधा रानी के भक्त हैं, और इतने महान लोग हैं। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूं कि हमारे कई साल पहले हम लोग कैंप करते थे, बहुत साल हो गए। तो पहले पहले सालों में हम लोग यहाँ पर एक गिरिराज भवन नाम की जगह है, इसका पहला नाम मोदी भवन था, बाद में गिरिराज भवन हो गया। हमारा वार्ड वहाँ पर हुआ करता, अभी तो वहाँ वार्ड यहाँ पर है ना, उसमें हुआ करता। उस समय पर हम लोग रात को राउंड लेते थे कभी कभी जाकर, उसको ठीक है ना देखने के लिए, कोई कष्ट नहीं हो रहा है, व्यवस्था रोके है तो व्यवस्था देखने के लिए हम लोग एक रात में गए थे 1-2 बजे। तो सब लोग पेशेंट ऐसे बिस्तर पे रजाई ओढ़कर सो रहे थे सब लोग, और हम लोग राउंड ले रहे थे तो कई बिस्तर के पास में राधे 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 ऐसा आवाज आया। तो हमको लगा, आपने डॉक्टर को बताया, देखो शायद उनको दर्द होता होगा, आंख में ऑपरेशन हो गया, दर्द होता होगा, इसलिए वो राधे राधे करके दर्द में पुकारते होंगे। तो डॉक्टर आया, हम भी गए उसके पास, कई लोगों का आवाज आ रही थी ऐसे। तो रजाई उठाकर हमने देखा तो वो मरीज गहरी नींद में सोया हुआ था, उसको कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा था, लेकिन नींद की गहराई के अंदर भी वो राधे 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 पुकार रहा। ऐसे कई मरीज एक साथ में रात को नींद में पुकार रहे थे। अरे हमको जब दिन में हम लोग पुकारते हैं ना हरे कृष्णा, तो वो नींद आती है, समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं मैं। दिन में जब जगने का समय होता है तो हम जब हरे कृष्णा पुकारते हैं हमको नींद आ जाती है, और रात में सोने का समय है तो उसमें वो राधा रानी को पुकार रहे, एकदम उल्टा कॉन्ट्रास्ट है पूरा। हमको भी ऐसा दिन में तो जगना ही चाहिए, जब करते समय ये भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन दिन रात जो भगवान को याद करते हैं, नींद में और जागते हुए, करते कुछ काम करते हुए ना करते हुए, बैठते हुए उठते हुए, जो दिन रात राधा रानी का स्मरण करता है वो कोई सामान्य जीव नहीं हो सकता है ना। सिर्फ पॉसिबल टू बी ऑर्डिनरी पर्सन, नॉट पॉसिबल। तो यहां पर धन जो है, यहां पर जो ऐश्वर्य है वो भक्ति का ऐश्वर्य है, वो नोटों का ऐश्वर्य नहीं है, या ब्यूटी का, वो मिस वर्ल्ड मिस्टर वर्ल्ड का यहां पर ऐश्वर्य नहीं है। प्रॉपर्टी एसेट्स करोड़ों की मालमत्ता, ये यहां का एसेट नहीं है। यहां का धन जो है, जो भगवान को राधा रानी को उनकी ओर आकर्षित कर लेता है, वो प्रेम का और भक्ति का धन है। वो योग इनके पास में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और उसी के माध्यम से वो भगवान को अपना बना लेती है, राधा रानी को अपना बना लेती है। उनके है भगवान। हाँ, हम लोग, मैंने कहा ना, योगी ध्यानी तभी हमारे जैसे लोग होते हैं, वो तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं, फिर भी भगवान के चरणों का एक नाखून का किरण भी उनको दर्शन नहीं होता है। और इनके पीछे जो है, भगवान कहते हैं कि इनका छाछ और मक्खन चुराने के लिए मैं वैकुंठ का आनंद छोड़कर यहां पर आया हूं। जस्ट इमेजिन, इनके घर का छाछ और मक्खन चुराने के लिए मैं वैकुंठ का 56 भोग छोड़कर यहां पर आया हूं। अनंत लक्ष्मियों का सेवा, ऐश्वर्यपूर्ण सेवा को छोड़कर मैं यहां का छाछ चुराने के लिए आया हूं। आप सोच सकते हैं, द्वारका में भी रहे वो कितने साल, 100 साल रहे द्वारका में। रात में उठते थे, बिस्तर में खड़े होकर रोते थे, ललिता विशाखा राधा विश्वभानु नंदिनी करके रोते थे। और रुक्मिणी सत्यभामा ऐसी पत्नियां हमेशा आश्चर्य क्या करती थी, अरे क्या बात, क्या इसके अंदर, हम लोग इतना सेवा करते हैं उनकी, इतना भाग्य लक्ष्मियां हम लोग हैं, और इतने प्रेम से उनको भोजन कराती हैं हम लोग, इतनी सेवा करती हैं हम, फिर भी वो ब्रज को नहीं भूलते हैं, ना राधा को भूलते हैं, ना ललिता विशाखा को भूलते हैं, ना माता यशोदा को भूलते हैं। क्या बात है उस प्रेम के अंदर, उनको समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। ऐसे है भगवान और ऐसे राधा रानी और ऐसे यहां के लोग हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि जहां पर स्वयं कृष्ण आकर इस रज में, इस मट्टी में लेट जाते हैं, उस रज के कर्ण को प्राप्त करने के लिए, जहां पर राधा रानी चली हुई है नंगे पैर, उस धूल को प्राप्त करने के लिए भगवान आते हैं यहां पर, रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं। वो रज है जहां पर आप बैठे हो, और जिस रज में बैठकर यहां पर आप सेवा कर रहे हो। यहां का जल जो है वो सब रसों का सार है, यहां का जो अन्न है प्रसाद वो सब रस का सागर है, यहां की हवा जो है साक्षात राधा और कृष्ण को आलिंगन दे रहे हैं, यहां का रस का आस्वादन करने के लिए देवता भी व्याकुल रहते हैं, लेकिन उनको यहां पर प्रवेश नहीं मिलता। सुखदेव नारद मुनि जैसे लोगों को भी यहां प्रवेश नहीं प्राप्त होता, देवता लोगों को प्रवेश प्राप्त नहीं होता, स्वयं भगवान यहां पर नंगे पैर चलते हैं, रज की अपेक्षा करते हैं, ऐसी पावन भूमि। और यहां पर वो रस की भिक्षा मांगते हैं राधा रानी के पास आकर, रस कहने की जो प्रेम का अनुभव होता है उसको रस कहते हैं, उस रस को चाहते हैं भगवान, उसकी याचना करते हैं, भिक्षा मांगते हैं यहां पर राधा रानी से, और राधा यहां पर रस का दान देती है उनको, और उस रस का आस्वादन भगवान करते हैं, उस रस के लिए भगवान लालायित रहते हैं यहां पर, जिसकी खान राधा रानी है, जिसका सोर्स उगम राधा रानी के चरण है, जो भगवान हमेशा अपने शीश पर धारण करते हैं। गोपियों ने एक बार सोचा कि अरे ये राधा रानी भगवान इसको वश में कैसे करती है, बहुत उन्होंने कोशिश किया कि हमको भी कृष्ण को वश में करना है, अपने कंट्रोल में करना है। तो एक दिन अचानक उन्होंने राधा रानी के चरणों की रज लेकर भगवान पे सर पे लगाई और भगवान सबके उनके वश में हो गए। तो ये वशीकरण चूर्ण है, इसका राधा सुधानिधि ग्रंथ में वर्णन आता है कि कैसे राधा रानी के चरणों की धूल वशीकरण चूर्ण है जो भगवान को वश में कर लेती है। सब गोपियों ने फिर समझ लिया कि भगवान को अगर वश में करना है तो राधा रानी के चरणों के धूल हमको भी लेना है और उनको भी लगाना है, भगवान भी वही चाहते हैं, क्योंकि उनके चरणों में सारी सिद्धियां सारा रस विकास प्राप्त करता है, तो वहीं से भगवान भी अपनी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों को मैं लाख लाख बधाई देता हूं कि आप लोग बड़े भाग्यवान हो, आपने जरूर पिछले जन्मों में बहुत 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 पुण्य किया होगा, वैष्णवों की सेवा की होगी, तपस्या की होगी, हाँ, और भगवान को पसंद किया होगा, इसलिए भगवान ने उसके फल के स्वरूप उनके धाम में, राजा रानी के धाम में आपको सेवा दिया है। हर एक व्यक्ति को भगवान अपना प्राइवेट सेवा देते नहीं है, हाँ? लेकिन अपने धाम के अंदर अपने प्रियजनों की सेवा जब देते हैं, इसका मतलब आपके ऊपर उनकी कृपा हो गई है, आप बड़े भाग्यवान हो। इसलिए यहां पर आप बैठे हो, उसके महत्व को समझने का प्रयास करो, क्या आपको प्राप्ति हुई है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ी प्राप्ति होती है, हम लोग को ठीक है, अभी क्या है, जो करोड़पति व्यक्ति है उसका बच्चा, उसको वैल्यू नहीं होती है पैसे की, इतने पैसे हैं तो क्या उसकी वैल्यू। कभी कभी बहुत बड़ा भाग्य प्राप्त करने के बाद भी दुर्भाग्य से हम उसको खो बैठते हैं। यहां पर कैसे रहना चाहिए, जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसको हमेशा याद करते हुए सेवा करते रहनी चाहिए। ऑलवेज बी कॉन्शियस व्हाट यू हैव अचीव्ड, क्या प्राप्ति हुई है। हमारे हाथ में अगर सोने का चमचा है, उससे हम दूध पी रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि सोने का चमचा है, नॉट ऑर्डिनरी स्पून। अगर उसको हाथ में हीरे भी लगे हुए हैं, चमक रहे हैं, उससे आप आइसक्रीम खा रहे हो, तो यू शुड नो कि दिस इज गोल्डन स्पून विद डायमंड्स एट द एंड। कहीं इसको छोड़ के जाना नहीं चाहिए, इसको संभाल के रखना चाहिए, सोने का चमचा है। उस तरह से ये भाग्य है, दिव्य भाग्य, जो कई जन्मों के अनंत जन्मों से पुण्य करने से प्राप्त होता है। तो इसलिए यहां का एक एक क्षण का जो वास है ना, वो आपको ये निश्चित कर देता है कि इस जीवन के अंत में आप भगवान के धाम में प्रवेश मिलेगा आपको। ये यहां के निवास का भाग्य। एक होता है ब्रजवासी जो यहां जन्म लेता है, यहीं रहता है। एक होता है ब्रजवासी जो बाहर जन्म लेता है लेकिन यहां पर आके परमानेंट रह जाता है। और तीसरा कैटेगरी जो है वो हम लोग हैं, जो कुछ समय के लिए यहां पर आते हैं, लेकिन ब्रजवास हम भी कर रहे हैं। दो दिन का हो, दस दिन का हो, पंद्रह दिन का हो, एक दिन का हो, दस मिनट का हो, ब्रजवास यानी यहां पर निवास करना। और हर ब्रजवास का एक ही फल होता है, भगवान का संग, और वो हमको प्राप्त होगा इस जीवन के अंत में। अगर हम इस संग को प्राप्त करने के बाद में सही चेतना को प्राप्त करेंगे, इफ यू अचीव प्रॉपर कॉन्शियसनेस एंड एटीट्यूड, तो फिर इस जीवन के अंत में हम अपने आप को भगवान के पास पाएंगे। इसलिए अपने कार्य को, अपने समय को यहां पर जब आप बिताएंगे, बड़े सावधानी से, बड़े भक्तिपूर्वक, बड़ी गंभीरता से निभाइए। टाइम पास और वेस्ट मत कीजिए यहां पर, क्योंकि समय जो यहां पर प्राप्त होता है वो बंबई में और अन्य जगह पर पाए हुए समय से अनंत गुना कीमती होता है। जो कभी 10 दिन में खत्म हो जाएगा समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन वो 10 दिन के जितने क्षण होंगे, एक एक क्षण जो है आपको भगवान के पास जाने में समर्थ है, आपको लेके जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय जय श्री राधे श्याम।